आस्तिक वहां से सीधे कमरे में चला जाता है, लेकिन अरुणिमा घबरा जाती है। कहीं सुबह वाले व्यवहार की वजह से आस्तिक अब उस पर गुस्सा तो नहीं करेगा? अरुणिमा को डरता हुआ देख अमृता ताई उससे पूछती हैं, आस्तिक अभी भी तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आता है क्या? अरुणिमा ने घबराई आवाज में कहा, अभी तक तो नहीं किया है, एक हफ्ता हो गया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। अमृता ताई ने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, अब वो कुछ भी नहीं करेगा, जाओ आराम से उसके पास जाओ और देखो वो क्या कह रहा है। अरुणिमा हाँ में सर हिलाती है, लेकिन उसके मन की घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। वो धीरे धीरे कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे में जाती है। कमरे में दाखिल होते ही वो इधर उधर नजरें दौड़ाकर आस्तिक को देखना चाहती है, लेकिन आस्तिक उसे कहीं नजर ही नहीं आता है। तभी आस्तिक अचानक अरुणिमा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अरुणिमा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन आस्तिक अरुणिमा के गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, बहुत टाइम लगा दिया आने में, तुम्हें पता है कब से बेचैन हो रहा हूँ। आस्तिक के इस तरीके के व्यवहार से अरुणिमा एकदम से कांप जाती है। उसे लगा आस्तिक उसे सजा देने के लिए बुला रहा है, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ चेंज है। आस्तिक अरुणिमा को एक झटके से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। अरुणिमा हैरान नजरों से आस्तिक को देखने लगती है, लेकिन आस्तिक की नजरों में इस समय सिर्फ मदहोशी थी और उसके अंदर चल रही बेचैनी को उसे शांत करना था। वहीं दूसरी तरफ पर शारदा जी अपने घर पर अपने कमरे में बैठी हुई थी। दो दिन से ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो आज हॉस्पिटल भी गई थी। डॉक्टर ने उन्हें मेंटली स्ट्रेस ना लेने के लिए कहा था, पर अपने जीवन में हो रहे इस उतार चढ़ाव को देखकर शारदा जी कैसे मेंटली स्ट्रेस ना ले? एक तो उनकी पहले ही इतनी बुरी हालत हो रखी है, ऊपर से अप्रताप का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, ना तो उससे बात हो पा रही है और ना ही उसका नंबर मिल रहा है। शारदा जी अपनी अलमारी के पास जाती हैं और उसे खोलते हुए लॉकर में से एक पुरानी फोटो निकालती है। ये किसी आदमी की फोटो थी। वो उस तस्वीर को लेकर बेड पर बैठ जाती है और उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है, तुम मुझे छुप छुप कर कैसे देख रहे थे, तुम्हारा वो प्यार से देखना मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं तुम्हें रोज याद करती हूँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी यहाँ पर क्या हो गई है तुम नहीं जानते हो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम यहाँ होते तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तुमने ऐसा क्यों किया अब है, क्यों किया, क्यों हमें छोड़कर चले गए? ये कहते हुए शारदा जी उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोने लगती हैं। वो अपने दुख को याद कर ही रही थी कि तभी उनका फोन बजता है। शारदा जी अपने आंसू पोंछती हैं और अपना फोन उठाकर देखती हैं तो वो एक अननोन नंबर था। शारदा जी ने उस फोन को रिसीव करते हुए कान पर लगाते हुए कहा, हाँ जी कौन बोल रहा है? सामने से एक भारी और मर्दाना आवाज आती है जो कहता है, मुझे पता है कि अभय को किसने मारा है। शारदा जी हैरान हो जाती हैं। वो कुछ समझ पाती या कुछ पूछ पाती इससे पहले ही कॉल कट जाती है। शारदा जी फोन पर चिल्लाते हुए कहने लगती हैं, हेलो हेलो, तुम कौन हो? तुम अभय को कैसे जानते हो? मुझे बताओ उसे किसने मारा? शारदा जी पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उन्होंने कई बार उस नंबर पर फोन भी किया, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा था। जहां पर उन्हें मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना था, तो वहीं पर अब वो गुस्से में पागल हुए जा रही थी। उन्होंने गुस्से में अपने बाल नोचते हुए कहा, कौन है वो कमीना जिसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया? अगर वो मुझे एक बार मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक अपनी माँ के कमरे में बैठा हुआ था। वो आराम से अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए एक शैतानी हंसी हंसता है और कहता है, मैंने तो एक छोटी सी चिंगारी फेंकी थी, पता नहीं था इतनी ज्यादा भड़क जाएगी। ये कहते हुए आस्तिक जोरों से हंसने लगता है। रात के समय आस्तिक वापस अपने कमरे में आता है। अरुणिमा बेड पर अभी भी किसी छोटी सी गुड़िया की तरह सिकुड़कर सोई हुई थी। आस्तिक उसे चद्दर से ढककर गया था। वो वापस अरुणिमा के पास आता है और उसके बगल में लेटे हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अरुणिमा आस्तिक की गर्माहट में फिर से सिकुड़कर सोने लगती है। काफी देर तक अरुणिमा को देखने के बाद आस्तिक उसके बालों को सहला रहा था और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में क्या चल रहा था और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे पहचान पाना मुश्किल था कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो अरुणिमा के साथ ठीक से ही पेश आ रहा था। अगले दिन सुबह अरुणिमा की जब नींद खुलती है तो वो खुद को आस्तिक की बाहों में पाती है। अरुणिमा हैरान रह जाती है। कल रात आस्तिक उसे खुद अपने साथ बिस्तर पर लेकर आया था और अपनी बाहों में लेकर सोया था। अरुणिमा के लिए ये बिल्कुल नया सा था, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि आस्तिक से विरोध का मतलब अपने लिए सजा पाना होता है। लेकिन आस्तिक सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था, एक मासूम बच्चे की तरह। हाँ, वो उठने के बाद एक शैतान बच्चा जरूर बन जाता था, लेकिन सोते हुए उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी। अरुणिमा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आस्तिक को छूना चाहा, लेकिन फिर सजा के डर से वापस अपने हाथ पीछे खींच लिए। अरुणिमा धीरे से आस्तिक की बाहों से निकलती है और बेड से खड़ी हो जाती है। वो जमीन पर पड़े हुए अपने कपड़े उठाती है और उसे लेकर बाथरूम चली जाती है। फ्रेश होकर अरुणिमा जब बाहर आई तो उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अपना श्रृंगार करने के बाद अरुणिमा एक नजर आस्तिक को देखती है और अपने रोज के काम के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। जब वो नीचे हॉल में जा रही थी तो उसने देखा कुछ सेवक अपने हाथों में फूल और पूजा का सामान लेकर खड़े हैं। क्या आज किसी तरीके की पूजा है? लेकिन अरुणिमा को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही किसी ने उसे बताया है। ज्यादा ध्यान ना देते हुए अरुणिमा रसोई की तरफ चली जाती है ताकि आस्तिक के लिए सुबह की कॉफी बना सके। पर जैसे ही किचन में कदम रखती है, नौकरानियां आपस में बात कर रही थी। मैं सर से अपने बेटे के एडमिशन के लिए बात करूंगी, दूसरी कहती है। हाँ, और मैं उनसे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहूंगी, तीसरी नाली ने कहा। मैं कहूंगी कि मेरे पति के सर पर बहुत कर्जा है, हमारा कर्ज माफ करवा दे। आज के दिन राजा साहब से जो मांगो वो जरूर देते हैं। अरुणिमा ये सब सुनकर हैरान हो गई।